نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير إن شاء الله تعالى هم شروع کریں گے مصیبتوں سے کیسے نمٹنے کا اگلا سیشن اور ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ مصیبتوں کے آنے سے پہلے کرنے کے کام ابھی تک ہم نے کیا کیا پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے تاکہ ہم پہ مصیبتیں نہ آئیں وہ کیا تھا سب مل کے بولیے شکر کرنا ہے کیونکہ شکر ایک رویے کا نام ہے اور بہت ساری چیزیں ہمارے رویے کے بدلتے ہی بدل جاتی ہیں دوسری چیز سب بولیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یعنی جانتے بوجھتے کہ سنت طریقہ کچھ اور ہے اللہ کے نبی کا کام کرنے کا یا اس بات کا حکم کچھ اور تھا لیکن ہم جانتے بوجھتے اس کو جھٹلائیں تیسرا کیا پڑھا ہم نے وہ گناہ جن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وعید ملی کہ ہم دنیا میں بھی اس کی وجہ سے سزا کے مرتکب ہوں گے اور اس میں ہم نے کتنے ٹوٹل گناہ پڑھے 28 دیکھیں آپ تو مالدار ہوتے جا رہے ہیں جب کوئی کاروبار شروع کرتا ہے نا تھوڑے پیسے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کاروبار چمک رہا ہے تو اس کے پاس بہت ساری دولت ہوتی ہے اور چوروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بہت رئیس شخص ہے تو آپ بھی اب ایمان کے اعتبار سے مالدار ہو رہے ہیں ملینیرین ہے یا بلینیرین ہے تو پھر جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور آتا ہے اس لیے اگلا جملہ بڑے شور سے سنیے گا جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں شیطان آتا ہے شیطان کم ایمان والوں کو چھوڑ کر بے ایمان والوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کے پاس آنا زیادہ پسند کرتا ہے کہ جو ایمان کی دولت سے لبریز ہوں تو ہم کسی کے بارے میں کچھ گمان تو نہیں کر سکتے 100% لیکن علم کا سفر جو ہے یہ انسان کو ایمان دیتا ہے اور ایمان کی دولت جب پاس آ جائے تو پھر بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے پھر زیادہ خطرناک ہو آپ دیکھیے کہ بڑے لوگ زیادہ لاکرز خریدتے ہیں نا امیر لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اپنے پیسے کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں اور غریب کے گھر کچھ اور آ بھی جائے تو کیا بڑی بات ہے وہ کیا لے جائے گا تو اسی طرح سے پھر کیئر لیس نہیں ہونا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین سے جوڑے جن کو ایمان کی دولت عطا فرمائے پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایک ایک لفظ کے بارے میں اپنے ایک ایک فعل کے بارے میں بہت کیئرفل ہو جائیں اس سوچ کے ساتھ کہ کہیں میری ایمان کی دولت جو ہے وہ مجھ سے الگ نہ ہو جائے تو آج انشاءاللہ ہم پیج 135 سے شروع کریں گے یعنی مصیبتوں کے آنے سے پہلے کرنے والے کام اور اس میں آج ہم چوتھا کام دیکھیں گے اور وہ ہے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہنا یعنی انسان گناہ گار ہے بندہ ہے خاکی ہے جب گناہ گار شخص گناہ کرے اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں لیکن جب بندہ گناہ کرے اور نڈر ہو جائے کہ میں نے کیا کیا یہ کوئی گناہ ہے یہ تو سب کرتے ہیں آج کے دور میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے جب کوئی ایسے کام کرے گا تو وہ چیز ایک انسان کے لیے بہت زیادہ پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ کو اتنا غفور الرحیم اور غفار الذنوب اور ستار العیوب بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق بھی دے دیتا ہے کہ اب تم اس گناہ کی معافی مانگ لو تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا دلائل ہے پہلی دلیل سورۃ انفال کی آیت نمبر 33 ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ان آیتوں میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر عذاب کرے جب کہ آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں یعنی جب تک آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بستی میں نبی کا ہونا اس بستی کو عذاب سے بچاتا ہے چھوٹی سی بات کہوں گی آج عقیدے کے ناطے سے بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی موجودگی کی بات کرتے ہیں کہ وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور ہمارے بلانے پہ آتے بھی ہیں تو سوچئے کہ نبی کی موجودگی پھر عذاب کیوں لا رہی ہے پھر دنیا میں مختلف فتنے آزمائشیں پریشانیاں جو ہمیں دکھ رہی ہیں یہ سب کچھ کیا بتاتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایمان کے راستے آسان کر دے اور ہم بہترین طریقے سے اپنے آپ کو ان چیزوں کے قابل کر دیں दूसरी चीज क्या है कि वो बख्शिश मांगते हैं अपने गुनाहों की, तो अल्लाह ताला अजाब नहीं देता। तो यहां आप नोट कर लीजिएगा, दो चीजें आपको मुझे समझ आ गई कि जब किसी बस्ती में नबी मौजूद हो तब अजाब नहीं आता। इसकी दलील पूरे कुरान पाक में मौजूद है, जब तक नबी कौमों के बीच में रहे कौमें अजाबों से बची रहीं, लेकिन जूं ही जब नबी उस बस्ती को छोड़ते हैं अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके, तो उसके बाद से अल्लाह ताला उस बस्ती को पकड़ लेता था। दूसरी सूरत क्या थी? बख्शिश तलब करना। और ये बड़ा खूबसूरत मजमून है, कभी आपको सूरत तौबा की तफसीर सुनने का मौका मिले तो आप उसमें इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बख्शिश मांगने से क्यों अजाब टलता है, जरा सा उस उसूल को देखिए जो हमने पहले दिन देखा था। हम पे तकलीफें दो वजूहात से आती हैं, जिसमें एक वजह हमारे गुना है। गुना पे तकलीफ आई, हमने इस्तगफार की, गुना माफ, तकलीफ माफ। जैसे आपको वो वाक्य सुनाया था कहीं मैंने कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में लोग पानी मांगने गए, बारिश नहीं हो रही थी, तो लोगों ने कहा कि सब मिल के खुली जगह पे जाके बारिश तलब करते हैं। जब गए तो अल्लाह ताला ने अब वही के जरिए मूसा को बता दिया कि एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है कि जिसके किसी गुनाह की वजह से किसी की भी दुआ कबूल नहीं होगी। नाम नहीं बताया, और अल्लाह सुबहान तआला नाम बताते भी नहीं है। ये अल्लाह करे हमारी भी सुन्नत हो कि हम दूसरों की बुराइयों को सरेआम नशर करने की बजाय हम उस चीज़ को लेने वाले बने। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि भाई हम में से कोई एक ऐसा है जिसके गुनाह की वजह से अल्लाह सुबहान तआला आज बारिश नहीं बरसाएंगे। कहा अच्छा। अब वो शख्स बैठा हुआ था जिसने कोई गुनाह किया था, उसको बड़ी शर्म आई, कहने लगा मैं कितना बदनसीब हूँ कि मेरी वजह से सबकी दुआएं कबूल होने से रह गई। वहां बैठे बैठे अल्लाह से बातचीत की, थोड़ी देर हुई तो बारिश शुरू हो गई। मूसा ने कहा अल्लाह ताला आपने तो फरमाया था कि कोई गुनाहगार बैठा हुआ है और उसकी वजह से किसी की भी नहीं कबूल होनी, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा आपको नहीं पता कि उसने यहाँ बैठे बैठे मुझसे तौबा कर ली और मैंने उसको माफ कर दिया, तो जब माफ कर दिया तो वो उजर टल गया, जब उजर टल गया तो मैंने आपके ऊपर बारिश कर दी। कहा अल्लाह ताला मुझे उसका नाम तो बता दे। सुनिए ना, इंसान के दिल में तजस्सुस बड़ा होता है ना, है कौन? अच्छा इशारा ही कर दे, अच्छा हिंट ही दे दे। कहा मूसा जब वो मेरा नहीं था, गुनाहगार था, मैंने तब नहीं उसका नाम तुझे बताया, तब तो वो मेरा बन गया, अब कैसे उसका नाम बता दूं? ये है सत्तारुल अय्यूब, अल्लाह हमें ये सिफत अता करे कि हम लोगों के ऐबों को छुपाएं ना कि उसको उछालें। तो बहरहाल ये बात समझ आ चुकी, और इसके बारे में आप पढ़िएगा डिटेल्स, बहुत खूबसूरत तरीके से इस बात को मुख्तलिफ सहाबे कराम के अकवाल की रोशनी में हमने देखा हुआ है कि किस तरीके से मुशरिकीन की ये आदत थी। हजरत इब्ने अब्बास का कॉल देखिएगा कि बिलाशुबा बैतुल्ला का तवाफ करते हुए मुशरिकीन कहते थे लब्बैक लब्बैक ला शरीक लका, तो ये सुनकर रसूलुल्लाह फरमाते कद कद, बस बस, यानी यहाँ रुक जाओ, यानी इससे आगे कुछ ना बोलो। लेकिन वो मुशरिक लोग कहते इल्ला शरीक हुवा लका तम लिकहू व मा मलक, मगर आपके लिए एक शरीक है, आप उसके मालिक हैं और वो मालिक नहीं। तो वो कहते गफरानका गफरानका, हम आपकी बख्शिश तलब करते हैं, बार बार ये कहते। उस पर रियायत उतरी, यानी यहाँ आपको वो बात भी समझ आ गई कि मुशरिकीने मक्का अपने दौर के मुसलमान लोग थे, वो शिर्क करते थे लेकिन उनको समझ नहीं आता था ये शिर्क है, वो कहते थे हम ये मोहब्बत में करते हैं। तो बहरहाल बात का खुलासा क्या है कि गुनाहों की बख्शिश मांगना, याद रखिए कि ऐसी चीज़ें हैं कि जो बंदे को हर वक्त अल्लाह सुबहान तआला की नज़रों में रखती हैं। देखिए आप इसको बिल्कुल अपने ऊपर लेकर सोचिए, मैं और आप अपने ऊपर लें, हमारा बच्चा गलत काम भी करे लेकिन उठते बैठते मामा से सॉरी कर ले, अम्मी माफ़ कर दीजिए, एक्सक्यूज़ मी, तो क्या हमें उस पर गुस्सा रहेगा? मासी ने बर्तन तोड़ दिया, अब वो कहती बाजी माफ़ कर दो, टूट गया, माफ़ कर देंगे आप? आप खुद देखें अपने ऊपर लेकर हमें सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता किसी पे। पंजाबी या उर्दू में क्या कहते हैं कि चोर नाल चतर, यानी एक चोरी की ऊपर से आप बातें कर रहे हैं कि आप नहीं, मैंने नहीं की, ये नहीं की। हमेशा अपने आप को अल्लाह सुबहान तआला की नजरों में एक मुजरिम समझते हुए कटहरे में खड़ा महसूस करें। और यकीन करें ये वो बातें हैं जो सोचने से समझने से आती है इंसान को कि अल्लाह जी ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह कोई है ही नहीं आपके सिवा, जालिम तो मैं खुद हूँ, ये जो तकलीफ मेरे ऊपर आई है ये तो मेरा गुनाह है। तो उठते बैठते अल्लाह की अदालत में खड़ा करें। यकीन करें जैसे आपने पाकिस्तान में देखा होगा अच्छी मासियां होती हैं, वो सुबह उठते ही आके कहते हैं जी बाजी आ गई हूँ, बताएं आज क्या करना है, वो एक उनका स्टाइल होता है ना, बंदा हाजिर है जी बताएं क्या करना है। मुलाजिम आके मालिक से पूछता है ना, सुबह उठते ही अल्लाह को सामने खड़े होके कहा करें अल्लाह बंदी उठ गई है, हुक्म कर, जो तू कहेगा मैंने करते जाना है। आप देखिए कि अंदर टूटता है ना, फिर ये बातें आती हैं। वरना तो इबादत करके भी, नमाज रोज़ा कुरान पढ़ के भी एक इंसान अपने आप को अल्लाह से दूरी महसूस करता है। एक छोटी सी मिसाल दे के हम अगली बात पे चलेंगे, और वो क्या है, आप देखिए कि आप अपनी मासी को कहते हैं कि देखो ये बर्तन बहुत कीमती है, इसको एहतियात से धोना। अब आप देख रहे हैं कि आपकी इंस्ट्रक्शन पे आपकी जो मासी है या आपकी मेट है, उसने कोशिश की और वो एक्स्ट्रा केयरफुल होकर इसको पकड़ रही है, वो इतना घबराई हुई कि उसके हाथ से प्लेट गिरी और टूट गई। आप ये सब देख रही हैं। जब आपने ये देखा तो आपको एहसास होता है कि बेचारी ने जान के नहीं तोड़ा, ये कोशिश कर रही थी कि ना टूटे, लेकिन टूट गया। तो घबरा जाती है, हाय बाजी माफ कर दो, हाय बाजी मैंने नहीं तोड़ा, हाय हाय करेगी ना, तो आप क्या कहेंगे, चलो कोई बात नहीं, मेरे से भी टूट सकता था, मैं देख रही हूँ कि तूने जान के नहीं किया, है ना ये बात। इसके बरक्स आप कहती हैं ये बड़ा कीमती बर्तन है, इसको ना तोड़ना, इसको एहतियात से धोना। कहती कौन सा ये, और ये पकड़ के, अच्छा ये कीमती है, कट करके आपके सामने वो नीचे फेंक दे। आप देख रहे हैं ये क्या हुआ, और साथ ही आप कहते ये क्या किया, तो फिर दूसरी प्लेट पकड़ के कहती है ये बाजी माफ कर देना, अब नहीं करूंगी। सात प्लेटों पे प्लेटें तोड़ती भी जा रही है और साथ आपसे माफिया मांग रही है। सच बताएं कि आपको उस पर गुस्सा आएगा या उसके ऊपर रहम आएगा? आप कहेंगे निकल जाओ, मुझे गुस्सा दिला रही हो, मेरा मजाक कर रही हो, मेरा खेल बना रही हो। बस ये जुमला जहन में रखिएगा, हम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और साथ प्लेटें भी तोड़ते जाते हैं, गुनाह भी करते जाते हैं, तो ये अल्लाह को हम मजाक कर रहे होते हैं। असल में जो मैंने ठेठ तर्जमा और अस्तगफिरुल्लाह का रखा हुआ है ना, ये आप में से जो लोग संडे के सेशन में थे तौबतुन नसूखा में, शाह नमाज में, उन्होंने भी कुछ चीज़ें सुनी होंगी, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एक चीज़ उसी में से याद रख लीजिए कि मेरी नज़र में तौबा अस्तगफार कहना क्या है, दो लफ्ज़ होते हैं, एक होता है तौबा और एक होता है इस्तगफार। तौबा क्या होता है कि पलट आई हूँ, ए अल्लाह मैं वापस आ गया, और इस्तगफार क्या कि मेरे पिछले गुनाह ढक दें। यानी अगर उर्दू में या पंजाबी में या किसी जुबान में आप अस्तगफिरुल्लाह को उर्दू के में कहेंगे ना, तो आप क्या पढ़ेंगे, ए अल्लाह पिछला माफ़ कर दे अब नहीं करूंगी, ए अल्लाह पिछला माफ़ कर दे अब नहीं करूंगी, अल्लाह पिछला माफ़ कर दे अब नहीं करूंगी, ये तस्बीह पढ़ें। ये तस्बीह पढ़ने के दौरान गुनाह होंगे, आप बाहर पैदल चल के आएंगे ना, मिट्टी लगेगी पाँव पे, आप स्नो में चलेंगे आपके पाँव पे स्नो लगेगी। ये हो नहीं सकता कि मैं और आप इंसानों की इस दुनिया में रहें और हमसे गुनाह ना हो, लेकिन अल्लाह को कौन पसंद है? आपने फरमाया कुल्लू बनी आदम खताउन, आदम का हर बंदा गुनाह करता है, आदम का हर बच्चा गुनाह करता है, और बेहतरीन खताउन कौन से हैं, जो मुस्तगफिरून, जो बख्शिश मांगते हैं। तो सारी बात का खुलासा आप शऊर से करें। मैं आपको टिप देती हूँ, ये बातें किताबों में नहीं होती, ये आपको अपने एक्सपीरियंसेस से मिलती हैं। कभी भी कोई मुश्किल आती है ना, सब पे आती है, हम सब पे आती है, रात को भी आती हैं, दिन को भी आती हैं, ऐसी जगह से आ जाती हैं सोची नहीं होती, कई जगह से सोचा होता है कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी आदत बता देती हूँ, जब कोई धड़का सदमा जान माल को मसला लगे तो मैं तसव्वुर में ला के यही बात कि अल्लाह ये मेरे किसी गुनाह की सजा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिन ज़ालिमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिका इब्नु अमतिका नासियती बियदिका मादिन फिया हुक्मुका अदलुन फिया क़दाउका। अल्लाह मुझे बता ये जो मेरे साथ मामला किया तूने बड़े अदल का किया, ये मैं ही ना फरमान तेरी बंदी हूँ तो तू मुझे माफ़ कर दे। एक होते मैं कहूँ मसलन मिसाल है, क्या एक माँ उसका बच्चा नहीं मिल रहा, गुम गया, या एक माँ उसका बच्चा बीमार है, आप माँ कहती हाय जल्दी ढूंढो किधर है मेरा बच्चा, हाय मेरे बच्चे को ढूंढो, और मुंह से कहती अल्लाह मेरा बच्चा मिल जाए, अल्लाह मेरा बच्चा मिल जाए, अल्लाह मेरा बच्चा मिल जाए। मिसाल ले लीजिए ना, बच्चा ज्यादा सेंसिटिव इशू है इसलिए मैं अक्सर इसी की मिसाल आपको देती हूँ। अब ये भी तो दुआ की ना, अब अल्लाह चाहेगा तो उसका बच्चा उसको मिल जाएगा, लेकिन दूसरी सूरत है वो कहती है ए अल्लाह मैं जालिम हूँ, मुझे पता है मेरी सजा है, तू मुझे माफ कर दे। अब वो ये नहीं कह रही, हमारा पाकिस्तानी उर्दू कल्चर का दुआ मांगने का स्टाइल क्या, हाथ जोड़ते हैं, फिर दोनों को जोड़ते हैं, फिर लाइनें मिलाते हैं, फिर बे बनाते हैं, फिर हाथ एक खास एंगल पर रखते हैं, फिर कहते हैं बीच में गैप भी ना हो, कहते हैं ऐसे खोल के मांगे तो दुआ गिर जाती है। ये उल्टे सीधे मामले हैं, ये इंडो पाक कल्चर में तो हैं, ये अरबों में तो नहीं थे। बाहर किसी ने मुझे कहा दुआ मांगनी है तो उल्टे हाथों से मांगो, ये ज्यादा कबूल होती है। भाई आपने मांगनी है मांग लीजिए, मैंने तो ये नहीं पढ़ा। बहरहाल अब हम कहते पूरे साहब के लाख के, फिर वो गा के दुआ पढ़े, अल्लाह आ गया तेरे बन पे, तेरे दर का दिवाली हो गया, जुमले बना बना के करते हैं, हालांकि दुआ आपके जज्बे हैं। इंशाल्लाह जिंदगी नहीं तो कभी आपको एक दुआ पे बुक पढ़ानी है लंबी सी, क्योंकि आज हमारा अल्लाह से ताल्लुक टूटा हुआ है, हम इसीलिए परेशान हैं। जब मुश्किल पड़ती है हम आप कह रहे हैं अल्लाह बच्चा ढूंढ दे, अल्लाह मेरा बच्चा किधर, अल्लाह मेरे बच्चे को मिला दे। नहीं, आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की चुपके चुपके माफी मांगे, आप देखिए जिस वक्त आपका अल्लाह से ताल्लुक जुड़ेगा आपका बच्चा आपके सामने होगा। ये हमारी जिंदगी की कमजोरी है। तो बहरहाल सारी बात का खुलासा, जब मुश्किल आए, आज के बाद बीमारी आए, सांस में दर्द हो, खांसी हो। अब मैं जब मतलब मुसीबत मुसीबत कहती हूँ ना, तो बाद लोगों को समझ नहीं आती मुसीबत क्या है। बात तो सास के आने को मुसीबत कहते हैं, और बाज जो है वो बहू के घर आने को मुसीबत कहेंगे, शोहर को मुसीबत कहते हैं। अपनी प्रैक्टिकल चीजों में ले, हम सब इंसान है ना, घर जा रहे हैं, अगर हम घर गए और एकदम सर में दर्द शुरू हुई तो ये मुसीबत है। आप क्या पढ़े, मुसीबत है। कोई अपना शौरी तौर पे किया हुआ गुनाह सोचे, मसलन गले में दर्द है ना, अच्छा मैंने कोई लफ्ज गलत बोला होगा इसलिए गले में दर्द है, कान में दर्द होता है, ओके मैंने कोई गलत चीज सुन ली है, आंख में दर्द है, ओके मैंने कोई गलत चीज देख ली है। यानी जिस उज्व में तकलीफ आए, बच्चे में तकलीफ आई, अब मैंने कोई बच्चे के मामले में नाफरमानी की है, अच्छा बच्चा मेरा मुझे सता रहा है, मैंने लगता है अपने माँ बाप को सताया था, उनके लिए दुआ शुरू कर दें। यकीन करें मैं आपको वो जिसको कहते हैं पते की बात बता रही हूँ, जब आपके बच्चे आपको सताए तो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा पढ़े, कि अल्लाह वो मेरा 25-30 साल पुराना कोई हिसाब चल रहा था माँ बाप के मामले में। ये बात भी मैंने तौबत-उन-नसूखा के सेमिनार में आपको समझाने की कोशिश की थी कि पुराना हिसाब चुका रहा होता अल्लाह लोगों के सामने हमें लाकर, कि अब तुम इसको सताओ क्योंकि इसने अपनी माँ को सताया था। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों की माफी मांगने वाला बना दे। टिप क्या बनी फिर अभी आज की, कि जब तकलीफ आए तो शऊर से गुनाह याद करके इंशाल्लाह माफी मांगनी है। पांचवी चीज बहुत खूबसूरत है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत कम लोग इसका ख्याल करते हैं, और वो क्या, नेकी के मुयस्सर आने वाले मौके से खूब फायदा उठाना। यानी मुसीबतों की आमद से पहले आपके पास जिंदगी में जो मौके नेकियों के आते हैं ना, उसको अवेल कीजिए। देखिए अब यहाँ जुमला लिखिएगा, बहुत अहम है, क्योंकि मैंने लोगों की तकवा की तारीफ हमेशा अधूरी देखी है। आपसे कोई पूछता है मुत्तकी कौन है, तो लोग कहते हैं गुनाहों से परहेज करने वाला, है ना। मुत्तकी कौन है, गुनाहों से बचने वाला। हम तकवा के साथ फौरन गुनाहों को डालते हैं, इट्स गुड, बिल्कुल ठीक का, बट ये तारीफ 50% है। अगर तकवा गुनाहों को छोड़ने का नाम है या उसका तड़प पैदा होने का नाम है ना, इट्स फाइन, वो एक अलग इशू है। लेकिन आधा तकवा नेकियों के मौके को इस्तेमाल करने का नाम है। बहुत सारे लोग गुनाहों के मौके पे रुक जाते हैं अल्लाह के खौफ से, गुनाह नहीं करते, अल्लाह की पकड़ का डर होता है, लेकिन आई हुई नेकियों को ऐसे फेंकते हैं जैसे हम रेस गाड़ी को फेंकते हैं, कीप इट चेंज है ना, रख लो तुम ही, हमें नहीं चाहिए, बेकार चीज है, फालतू चीज है। इतने हमारे रास्ते में नेकियों के मौके आते हैं, बिलीव मी, मैं दिन रात देखती हूँ ये चीजें और मैं कहती हूँ अल्लाह हमें वो विजन दे, हमारी ग्लासेस का वो नंबर हो जाए कि हमें राह जाती नेकियां नजर आए। दूसरा आके नेकी कर जाते हैं, हम सामने खड़े होते हैं, हम नहीं कर पाते। आप कहीं मस्जिद में गए हैं, वहां कोई टिश्यू पेपर फेंक गया, वो टिश्यू पेपर नहीं है, वो आपकी नेकी का मौका है, आप उसको उठाकर बिन में फेंक दें। आप बाथरूम में गए, मस्जिद में देखा आपने ढेर गंद पड़ा हुआ है, आप जल्दी से उसको पकड़ के बिन साफ कर दीजिए, ये आपकी नेकी का मौका है। कोई आपको दुख दे रहा है, आप उसको दुआ दे दें, ये नेकी का मौका है, सब्र कर लीजिए, नेकी है। छोटी छोटी नेकियां अगर हम जमा करें ना, यकीन करें अब हम करोड़पति हो चुके होते नेकियों में। और इस मामले में लोगों की नजर कमजोर होती है, कहते अच्छा ये करना था, अच्छा मुझे भी आना था, अच्छा मुझे भी दूसरों को बताना था। खास तौर पे ये मैं अपनी दावत और तबलीग के रास्ते में नेकियों के मौकों की जो लोगों को ना कदरी करते देखती हूँ, भाई आपने फलां सिस्टर को बताया कि वहां प्रोग्राम हो रहा है या कोर्स हो रहा है, नहीं उसने कहाँ आना है, अच्छा अच्छा फलां शाम का दर्स है आपने लोगों को बताया, नहीं वो तो घर वाले ही बताएंगे ना। यानी इतने लाओबाली होते, मिसाल है कि मेरा दिल करता है कि लोगों की हिदायत का मैं जरिया बनूं, तो मैं इस मस्जिद में बैठ के बन जाऊं, मैं ऊपर वाले रूम में बैठ जाऊं, मैं नेबर में चली जाऊं, मैं पाकिस्तान चली जाऊं, मेरा गोल तो एक ही है ना कि लोग सुन ले। जब मेरी नजर इस पे होगी कि मेरे कहने पे जो बंदा इधर आएगा वो मेरा सदका जारिया होगा, तो क्या मैं अपने इस मौके को जाया करूंगी। हमारे पास 1001 मौका होता है अपने प्यारों को, अपनी दोस्तों को, अपने साथियों को बुलाने का, बताने का, हम केयरलेस होते हैं। मसल मैं आई, मेरी गाड़ी में 4 की जगह थी, क्या मेरी इस नेकी के मौके को मैं अकेले भी आई, पेट्रोल उतना ही लगा, वक्त उतना ही लगा, जो कुछ भी रास्ते में प्रॉब्लम आए वो आए, तो अगर मेरे साथ पिछली चार सीटों पे चार लोग बैठे होते तो ये मेरी नेकी के मौके थे। यकीन करें, मस्जिद में जा रहे मर्द नमाज पढ़ने, दो घरों की बेल करके उनको कहते चलें भाई मैं जा रहा हूँ, आपको भी ले जाता हूँ। और तावन अल बिर्री व तकवा वला तावन अल इस्मि वल उदवान, हमारे दीन की जो बुनियाद है ना वो क्या है, व तवासु बिल हक की व तवासु बिस सब्र। तो लिहाजा नेकी के मौके को कभी हल्का ना जाने। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नेकी को हकीर ना जानो, ला तहतकिरन्नल हसनात, हसनात को हल्का ना जानो, हत्ता कि तुम्हारा अपने भाई को स्माइल देना। क्या दूसरे को देख के स्माइल देना नेकी नहीं है? जिससे दिल में कदूरत है उसको देख कर एकदम शेक हैंड करना, हाथ बढ़ाना नेकी नहीं है? दिल में किसी के लिए आ गई बात, कोई बाल आ गया, क्या उसको अल्लाह के लिए माफ़ कर देना और पहल कर लेना सलाम में, क्या ये नेकी नहीं है? बस दफ़ा याद रखिए, हम दूसरी नेकियां, यानी मैं अक्सर बोलती हूँ कि जहन में मेरे आती है ये चीज़ कि हम अल्लाह के मामले की नेकियों के लिए बड़े केयरफुल होते हैं। नफिल रोज़े भी रखते हैं, सदके भी देते हैं, हम फ़र्ज़ के साथ सुन्नत है, सुन्नतों के साथ नफिल भी पढ़ते हैं, सुबह आने से पहले हमने एक सपारा भी पढ़ा होगा। अल्लाह के हक वाली नेकियां तो बड़े शौक से करते हैं, लेकिन अमूमन लोग बंदों के हक वाली नेकियों को ज़ाया करते हैं। और याद रखिए, क़यामत के दिन का सबसे मुश्किल पर्चा हकूकुल इबाद का है। हम अल्लाह के हकूक में बहुत जल्दी बच जाएंगे, कई लोग इबादतों के पटारे लेके बैठे होंगे। हदीस में आपने पूछा मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है, कहा जिसके पास दिरहम दिनार नहीं है, कहा नहीं, इन्ना मुफलिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो नमाज रोजे नेकियों के साथ आएगा, लेकिन लोग आते जाएंगे जिनको उसने सताया, किसी को कद शतमा गाली दी, किसी की गिबत की, और एक एक बंदा उसकी नेकी ले जाएगा हत्ता कि उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। सोचिए जरा, और आखिर फिर दूसरों के गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे, फतुरिहत इलन्नार, फिर उसको आग में झोंक दिया जाएगा। तो याद रखिए, नेकी के मौके बहुत कीमती होते हैं, और इसमें अगर आप देखें तो इन्होंने इसके तीन मुख्तलिफ हिस्से किए हैं। हासिल शुदा मौके के हर लम्हा ख़त्म होने का अंदेशा हो। देखिए, हर नेकी जो है ना एक पॉपअप है, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो मेरी बात समझ जाएंगे। कोई विंडो थोड़ी देर के लिए आपकी स्क्रीन पे पॉप अप होती है, ज्वाइन कर लीजिए तो आप एंटर हो जाएंगे रूम में, और ज्वाइन नहीं किया तो वो चली जाएगी। फ्लक्चुएशन होती है। अल्लाह नेकियों के मौके देकर दिखाता है कि इसमें से कौन केयरफुल है। और बस दफ़ा यकीन करें, सिर्फ अपने नफ्स की बुराई की खातिर हम नेकी का मौका नहीं लेते। क्यों? कि हमें उस नेकी को कहने वाला जो बंदा होता वो नहीं पसंद होता। ऐसे क्यों कहा, इसलिए मैं नहीं करूंगा ये नेकी, उसने कह दिया इसलिए नहीं करूंगा, मेरे थ्रू नहीं हुआ इसलिए नहीं करूंगा। वही जैसे मैंने पहले भी इन दिनों में मिसाल दी है कि जिसको दूसरों की सेहत चाहिए वो ये कहेगा कि आओ मेरे ही पास तो मैं इलाज करूं, वो कहेगा तुम उस डॉक्टर के पास चले जाओ बस तुम्हारी सेहत हो जाए। आज बस दफा दीन के काम में शैतान हमारे दिलों में ये डालता है, डायरेक्ट मैं कहूं फिर आप नेक हो, और किसी का ना सुनिएगा, आप किसी और की मस्जिद में ना जाइएगा, आप किसी और का दर्स ना सुने कि कहीं आप उनकी वजह से नेक ना हो जाए। तो ये तो फिर मैं हूं, ये तो अना है, और अना ही तो आप देखिए कि सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन है। तो लिहाजा हर लम्हे खतरा रहे कि ये नेकी मेरे हाथ से छिन जाएगी। मैं अक्सर साथियों को कहती हूँ, हर जगह साथी होते हैं माशाल्लाह, साथ दीन के काम करने वाले, अल्लाह की रहमत के बाद साथियों की मदद से ये सब कुछ होता है। तो ज़रा सा कोई नखरा करे या एक दूसरे में हो जाती हैं छोटी छोटी बातें दिलों में आती, मैं उन्हें कहती हूँ सोच के ना कीजिएगा, ये काम तो हो जाना है, मैं आपको ना पढ़ाऊंगी कोई और पढ़ा देगा आके, मेरे से अच्छा पढ़ाएगा। कभी कोई कुर्सी खाली नहीं रही, कभी कोई फील्ड खाली नहीं रहा, उससे अच्छा ही आता है। मुझे आपको करना है, यानी हमारे अपने साथियों की एक बात मुझे एक दो की बहुत अच्छी लगती है, वो कहती है उस्ताजा मैं तो अल्लाह को कहती हूँ, अल्लाह मैं सिर सुट के लगी हुई हूँ, मैनू हटाई ना, मेरी जिंदगी के अंदर मुझे इस जगह से ना हटाना, मैं चंगा करूँ मैं बुरा करूँ मैं ठीक करूँ मैं बुरा करूँ, बस अल्लाह मुझसे करा ले, मुझे नहीं आता करना बट मैंने करना, क्योंकि ये मेरी ज़रूरत है। स्कूल को मेरी ज़रूरत नहीं, मुझे इस स्कूल की ज़रूरत है। और वाकई मैं देखती हूँ कि जो इतनी आजजी से करता है फिर अल्लाह उसके मौके बढ़ाता है। जहां दिमाग में खुन्नस भरा, देखते हैं कौन करता है इनका काम, करके दिखाएं, भाई नहीं करेंगे नहीं होगा काम, लेकिन आपकी नेकी चली जाएगी। तो अल्लाह ताला हमें नेकियों के मौके की कदर की तौफीक दे।